पृष्ठ संख्या 82। दिनकर व्यापक सामाजिक चेतना के कवि। दुनिया के दूसरे देशों में जन्म शताब्दी वर्ष का गंभीर उपयोग होता है। हम लोग अंग्रेजी के माध्यम से यूरोप के बारे में जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले स्पेन के महान उपन्यासकार सर्वेंटिस की 400वीं जयंती मनाई गई। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन पर कम से कम 50 किताबें छपी हैं और 3 साल के भीतर 25 पत्रिकाओं के विशेषांक निकले हैं। दुनिया के देशों में शताब्दी वर्षों का जैसा भी गंभीर उपयोग होता हो, हिंदी में तो प्रायः शताब्दी वर्ष खाओ पियो वर्ष रूप में मनाया जाता है। जन्मशती वर्ष में दिनकर का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। दिनकर के बारे में अच्छा बुरा कहा लिखा बहुत गया है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने एक लेख में लिखा था कि हिंदी में किसी भी जीवित कवि के बारे में इतना नहीं लिखा गया जितना रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। हाँ, बहुत अच्छा नहीं लिखा गया है। इसमें दिनकर जी का तो कोई दोष है नहीं, लिखने वालों की अपनी बुद्धि जहाँ तक जाएगी वहीं तक वह लिख सकते हैं। प्रत्येक बड़े कवि की कविता बहुत दूर तक उसके व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति होती है। व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। कवि का परिवेश, उसकी मनोभूमि, उसका स्वभाव, उसके भाव, उसके विचार, उसकी संवेदनशीलता और उसकी समाज में कर्मशीलता, ये सब व्यक्तित्व के बनने बनाने के हिस्से हैं। हर एक कवि की रचना में व्यक्तित्व के हिस्से होते हैं। मैं दिनकर के व्यक्तित्व की बुनियादी विशेषता की खोज करते हुए उन्हीं की एक पंक्ति से मदद लेते हुए कहना चाहूँगा कि दिनकर जी पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल थे। यह हिमालय नाम की उनकी कविता की एक पंक्ति है। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं, एक तो पौरुष और दूसरी ज्वाला। उनके काव्य और व्यक्तित्व को मिलाकर देखिए तो वह शक्ति और ऊर्जा के कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं और साथ ही उनकी कविता में यहाँ से वहाँ तक आग दिखाई देती है। दिनकर जब हिंदी कविता में आए तो उस समय क्या वातावरण था हिंदी कविता का? वह समय कविता में छायावाद का था। छायावाद की कविता की पहली विशेषता यह थी कि वह अपनी ही जनता से दूर की कविता थी। दूसरी यह कि पृष्ठ संख्या 83, उसकी भाषा जीवन व्यवहार से अलग एक काव्य भाषा थी। तीसरी बात यह कि जनता से अलग थलग होते ही उसका उर्दू से पूरी तरह अलगाव हो गया था। छायावाद ने हिंदी उर्दू के अलगाव को हमेशा के लिए अस्थायी बना दिया। चौथी बात यह कि वह स्वाधीनता आंदोलन का दौर था। जनता लड़ रही थी, मर रही थी और अपने समय की कविता में अपनी जिंदगी की वास्तविकताओं, आकांक्षाओं और संघर्षों की आवाज़ सुनना चाह रही थी जो छायावाद की कविता में सुनाई नहीं पड़ रही थी। वह ऐसी भाषा में सुनना चाहती थी जो उसके दिलो दिमाग को छुए। ऐसे समय में दिनकर जी हिंदी कविता में आए। दिनकर ने बहुत बड़ा काम किया कि एक साथ हिंदी कविता का रूप उसकी अंतर्वस्तु और जनता से उसके संबंध को बदल डाला। यह काम अकेले दिनकर ने नहीं किया, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा आदि उस पीढ़ी के अनेक कवियों ने किया। हिंदी कविता या आलोचना में जिसे छायावादोत्तर पीढ़ी कहा जाता है, उसने 4 काम एक साथ किए। एक तो काव्य भाषा को बोलचाल की भाषा के करीब ले आए। दूसरा काम यह किया कि जीवन की सच्ची अनुभूतियों की केवल काल्पनिक अनुभूतियों की नहीं अभिव्यक्ति कविता में शुरू की, जिनका समाज और राष्ट्र के साथ गहरा रिश्ता था। तीसरा काम किया जो काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है कि उससे कविता में बोधगम्यता आई, कविता आसानी से समझ में आ सके, ऐसी भाषा और शैली में लिखना शुरू किया। चौथा काम यह कि स्वच्छ अभिव्यक्ति, ऐसी अभिव्यक्ति जो कहीं भी दुराव छिपाव को महत्व नहीं देती है। इन 4 कामों का एक परिणाम हुआ कि कविता जनता से जुड़ी, जनता ने कविता का स्वागत करना शुरू किया। दिनकर बच्चन जैसे कवियों को उस जमाने में कवि सम्मेलनों में सुनने के लिए भीड़ हुआ करती थी। एक तरीका वह भी था। दूसरा तरीका यह था कि पाठकों के रूप में जनता कविता से जुड़ती थी। बहुत सारे कवि केवल पाठ्य पुस्तकों के कवि होते हैं। आज भी हिंदी में ऐसे अनेक महाकवि हैं जिनको पाठ्यक्रम से निकाल दिया जाए तो चार पांच पाठक भी नहीं मिलेंगे। कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनको मजबूरी में लोग पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। दिनकर भी उन्हीं कवियों में से एक थे जो बाहर लोकप्रिय होने के बाद पाठ्यक्रम में आए। यह जो कविता का रूप बदला, इसका एक और दूसरा बड़ा महत्व है। जिस ओर हिंदी में ध्यान नहीं दिया गया, छायावाद के बाद प्रगतिशील आंदोलन की काव्य भाषा के लिए रास्ता बनाने का काम दिनकर और नई पीढ़ी ने किया। अन्यथा प्रगतिशील कविता के लिए भाषा निर्मित करना एक नए सिरे का काम होता। यह संभव नहीं कि प्रगतिवादी कवि छायावादी काव्य भाषा में प्रगतिशील कविता पृष्ठ संख्या 84 लिखकर प्रगतिशील बने रहते। इसलिए कविता की भाषा को मोड़ने और जनता से जोड़ने का जो काम दिनकर और उनकी पीढ़ी ने किया, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। दिनकर के काव्य पर यदि आप ध्यान दें तो उनका शुरू का काव्य, खास तौर से 1930 से 1947 तक का काव्य स्वाधीनता आंदोलन का काव्य है। स्वाधीनता आंदोलन के उतार चढ़ाव, द्वंद्वों, दुविधाओं, जय पराजय का इतिहास यदि किसी एक कवि की कविता में खोजना हो तो यह इतिहास केवल दिनकर की कविता में मिलेगा। दिनकर स्वाधीनता आंदोलन के कवि हैं। दिनकर कानाफूसी की भाषा में क्रांति करना नहीं जानते थे। बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो ऐसी भाषा और ऐसे अंदाज में क्रांति की कविता लिखते हैं कि जैसे दूसरे के कान में धीरे धीरे बतिया रहे हों। इसके ठीक विपरीत उनकी स्वाधीनता से जुड़ी कविताओं में शक्ति है, आग भी है।